हम पराधीन होते हैं। बाल्यावस्था में तो पराधीनता होती है, यदि रक्षण नहीं मिलता तो बच्चा ही मर जाता, उसका जीवन ही बदल। वैसे वृद्धावस्था में भी शरीर असक्त हो जाता है, पराधीन बन जाते हैं, निस्सहाय बन जाते हैं, बालक की तरह पड़े रहना पड़ता है, शरीर काम में साथ नहीं दे रहा है। उस समय भी हमारी वृत्तियां जैसे पहले जीवन के आरंभ में थी, जीवन का आरंभ बाल्यकाल जैसा था, वैसा ही वृद्धावस्था में भी हम बालक बन जाए। यदि जीवन जीने का रस प्राप्त करना हो, जीवन जीने का आनंद प्राप्त करना हो, तो बाल्यावस्था में जैसा आनंद आता था वैसे वृद्धावस्था में बना लो। खिलाएंगे तो खाएंगे, पिलाएंगे तो पिएंगे, और सुलाए तो सोएंगे, क्योंकि बच्चा न उठ सकता है, न बोल सकता है, न कह सकता है। यदि कुछ होगा तो रोएगा, बस यही उसकी भाषा है, रोना, बच्चे की भाषा ही रोना। तो उसकी माँ को पता चलेगा कि उसको कुछ आवश्यकता है या कुछ उसको हो रहा है, कुछ मांग रहा है। तो जो निस्सहायता है बालक की, वैसे ही वृद्धावस्था में भी बालक बन जाओ। कुछ भी करो मत, जो कुछ मिल गया, बच्चे को क्या है, पहना है तो पहन लिया और खुला रखा तो बस, और जो पहनाया, जो खिलाया, वो कभी अपनी मांग नहीं करेगा, मिल गया ठीक है, उधर वृत्ति पूरी हो गई हमारी, बच्चे को दूध मिल गया, शांति और संतोष। ऐसे वृद्धावस्था में भी सबसे पहले हमारी जो वृत्तियां हैं उसको निवृत्त करो। लेकिन वृत्ति कभी निवृत्त होती ही नहीं है, भटकती रहती है। ये खाऊं, ये करूं, ये बोलूं, वहां जाऊं, इसको गाली दे दूं, इसका अपमान कर लूं, इसको मारूं, वृत्ति भटकती है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हर एक बात में वृत्ति भड़कने लगती। खाने में देखो, सारी जिंदगी के जो स्वाद किए हुए वो याद आएंगे, आज वो खिला दो ना, बना दो, आज वो खाएंगे। जितना बुढ़ापा अधिक आएगा ना, उतनी खाने की बातें बहुत भड़कती हैं, अरे कितने दिन से तो खाया नहीं है, आज बना दो। क्योंकि अवस्था के अंदर वृत्तियां अनुभव वाली हो जाती है, और ज्यादा अनुभव के कारण उसमें अधिक से अधिक लोलुपता भी आती है, और इसकी इच्छा बार बार हुआ करती है। लेकिन जिसने देखा ही नहीं है, खाया भी नहीं है, सुना भी नहीं है, उसको चीज याद ही नहीं आएगी। तो जीवन ही हमारा ऐसा वृत्तियों का अनुभव वाला बन चुका है कि जिसके कारण भटकने की वृत्ति अधिक लग जाती है, हर एक चीज में, हर एक बात में। जो चीज याद आ गई वहां भटकने लग गए, जहां पर सुख जैसा कुछ दिखाई दिया तो वहां पर रम गए। बस हमारा जीवन ही पशु जैसा बन जाता है, हरी घास पशु ने देखी उस तरह नजर मुंह लगा दिया, चल गया उस तरफ, वहां से निकला, कुछ खाया पिया, आगे बढ़ा, वहां पर कुछ दिखाई दिया तो उधर मुंह मार लिया। वैसे ही हमारा मनुष्य है, फिर भी हमारी वृत्ति पशु जैसी, भटकते रहते हैं पशु की तरह, भोगों की लोलुपता है, मन में भोगों की आसक्ति है, जीवन के प्रति अपने शरीर का इतना लगाव है कि उसके कारण हमारा जो अध्यास है, देहाध्यास नहीं जाएगा। वृत्तियां जब भी हमारे मन की, हमारे शरीर की शांति ही होगी, तभी जा करके हम निवृत्त हो सकते हैं। 60 हो गए, दफ्तर से तो निवृत्त कर दिया, लेकिन हमारे जीवन से निवृत्त नहीं हुए। वहाँ पर कि भाई अब तो उन्होंने हमको बेकार बना दिया, निवृत्त हो गया, अब मैं क्या करूँ, समय मेरा कहाँ जाएगा। देखना जितने निवृत्त हुए उसके बाद वो जल्दी बूढ़े हो जाते, जब तक काम करते हैं तब तक उनमें उनकी मानसिकता बड़ी अच्छी रहती है। बस 60 हुए, निवृत्त हुए कि नहीं, क्यों फिर उसका दिमाग ही ऐसा, मैं बूढ़ा हो गया कुछ काम नहीं, अब खाली बैठा है। खाली बैठने के कारण ही उसकी वृत्तियां ऐसी हल्की बन जाएगी, गलत रास्ते पर भटक जाएगी। जो न हुआ होता भी वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा निवृत्ति के बाद। बस ये बात है, ये हमारी वृत्तियां निवृत्ति होने के, व्यवसाय में से निवृत्त होने के बाद उसको ऐसे लगा दे कि उस निवृत्ति का सही आनंद, उसका सही स्वाद हम प्राप्त कर सकें। संत का जीवन देखो, निवृत्त होते भी होते हुए भी प्रवृत्त है, कहा तो अपने इष्ट के अंदर वो प्रवृत्त रहेगा, अपने ज्ञान में या तो अपने स्वरूप में बनी रहेगी उसकी वृत्ति। निवृत्त होते हुए भी जो भी है वो अपने में, दूसरे की अपेक्षा नहीं, मुझे और कोई दूसरा सुख देगा और कोई आश्रय देगा, वहां से मान मिलेगा यहां से अपमान मिलेगा, या तो बता दिया है प्रभु ने कि संसार कभी पूजा भी करता है, कभी अपमान भी करता है, कभी फूलों का हार भी पहना देता है, कभी जूतों का हार भी पहना देता है, कभी प्रशंसा से जय जय भी करता है, कभी गालियां भी देता है। लेकिन संत अपने जीवन में वो बिल्कुल अपनी वृत्तियां अपने में बना रख के चलता है ना, तो संसार की जो दुष्वृत्ति है वो कुछ असर नहीं करेगी उसको, कुछ नहीं कर सकती। वो अपनी मौज में है, वो अपने स्वस्वरूप अपने साधन में मस्त है, क्या जरूरत है इसकी। जिसको जो कुछ बोलना है बोलने दो, बोलो बोलो, थकेगा तो वो थकेगा। गाली देने के वाले का परिचय कराना नहीं पड़ता है, वो स्वयं ही करा देता है। गाली दे रहा है उसके परिचय की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही अपना परिचय करा देता है बोल के ये दुष्ट है, ये दुर्जन है, ये गाली देने वाला वहां से हट जाए। वैसे अपना परिचय अपने स्वयं से वो दे देते हैं। तो मान और अपमान जो मिलता रहता है उसमें इसके द्वारा अपने में कभी भी विकार न आने दे, होना ही नहीं चाहिए। बोलता है तो हमें क्या भारी, वो बोल रहा है थकेगा तो वो थकेगा, दुनिया उसको दुर्जन कहेगी तो उसको कहेगी, हमको गाली सुनाने वाले को नहीं, गाली सुनने वाले को कोई दुर्जन नहीं कहा नहीं कहेगा, गाली सुनाने वाले को ही कहेंगे, बोलने वाले को ही कहेंगे तो दुर्जन। और गाली देते हुए भी मौन है, बड़ा सज्जन आदमी है, संयमी है, उसका परिचय भी नहीं देना पड़ता, मिल जाता। तो वृत्ति हमारी हमारे स्वरूप में जब लीन हो जाए, हम स्वयं हमारी वृत्ति को निवृत्त कर लें, हमारी वृत्ति को जगत के व्यवहार के साधन में से उखाड़ करके अपने स्वस्वरूप में भगवत चिंतन मनन में नाम स्मरण में भगवत भजन में अपनी वृत्ति लगा लो, आप निवृत्त होते हुए भी प्रवृत्त हो गए। निवृत्ति और प्रवृत्ति क्या है उसका विवेक व्यक्ति को स्वयं होना चाहिए। जो भौतिकता में रम रहा है वो प्रवृत्ति है, मगर वो उसको सदगति नहीं देगी, उसको आनंद नहीं देगी। लेकिन हमारी जो वृत्ति प्रभु के प्रति है, दुनिया कहेंगे कि निवृत्त है, लेकिन हम हमारे में प्रवृत्त है और दुनिया देखेगी कि प्रवृत्त है, लेकिन वो मात्र भौतिक में, अपने में नहीं। जब भी इस बात का हम स्मरण करते हैं, स्वयं अपने स्वस्वरूप से हमारा नाता हम जब जोड़ लेते हैं, तब अपने में किसी भी प्रकार की खलबली उत्पन्न होनी नहीं चाहिए, अशांति कभी भी नहीं आनी चाहिए। बस इतना ही समझ लो, मान हो चाहे अपमान हो, अपने में वो हमेशा स्थिर बना रहे, स्थित प्रज्ञ। जो कुछ होता रहे होने दो, हमको कुछ नहीं होता, जो होता है ये बाहर की बात। जब ये वृत्ति हमारी बनती है, तब हम सही रूप में निवृत्त। दुखी होते हैं दुनिया का व्यवहार देखकर, हम अशांत होते हैं परस्पर के व्यवहार से। जब भी उसमें से हमारी वृत्ति लौट आएगी, और जो भटकती हुई वृत्ति है, थकी हुई है, अपमानित हुई है, हारी हुई है, अशांत हुई है हमारी वृत्ति, उसमें से सब में से निवृत्त होकर के आ जाओ, अपने स्वस्वरूप में प्रवृत्त हो जाओ। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रवृत्ति को हाथ में लेकर के, जो महापुरुषों ने दी है, जो संतों ने हमको दी है, शास्त्र ने हमको जो दी है, उस प्रवृत्ति में लग जाओ। ध्यान, भजन, चिंतन, मनन, स्मरण, सत्संग, जप, पूजा, कोई भी किसी भी एक को पकड़ लो, लेकिन उसमें निष्ठा होनी चाहिए। जो आधार मैंने लिया है वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, वही मुझे पार होगा। जब यही दृढ़ता हमको पार ले जाएगी, ऐसा विश्वास हो जाएगा। चेतन बिनु विश्वास भगति नहीं, देह बिनु द्रव ही नरा। हमको हमारे में विश्वास नहीं है। जब भी अकेले बैठते हैं, तब अपने आप को टटोलो, हमारे में ही हमको विश्वास नहीं होगा कि नहीं होगा। हम दुविधा में पड़ जाएंगे, होगा तो क्या होगा, सफल होगा कि मैं निष्फल जाऊंगा। हर एक बात में व्यक्ति अपने में पहले कभी विश्वास नहीं प्राप्त कर सकता, होता ही नहीं। चाहे बाहर बोलेगा, लेकिन अंदर से थोड़ा घबराया हुआ होता। कितनी सफलता मिलेगी, पूरी मिलेगी, आधी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कम मिलेगी। अब देखो, व्यक्ति को अपने पर ही विश्वास नहीं है, अपने जीवन पर ही उसको भरोसा नहीं है। यदि उसके पास सत्संग है, और उस सत्संग के द्वारा अपने आत्मा के ऊपर वो पूरा भरोसा रख सकता है। शरीर तो विकृति वाला, विकृति धर्म है, मरण धर्म है, लेकिन मैं आत्मा हूं, मेरे में कोई विकृति नहीं, मैं मृत्यु वाला नहीं हूं, मैं अमर हूं। मैं वहीं जाऊंगा जहां परम तत्व जो अमर है, शाश्वत है। मरेगा तो शरीर मरेगा, फूंक देंगे तो शरीर को फूंक देंगे, मेरे को। जब ऐसा दृढ़ संस्कार हमारे में बैठ जाएंगे, तब ही जा करके हम भौतिक वृत्ति से निवृत्त हो सकते हैं। बाकी तो प्रौढ़ हो गए, निवृत्त हो गए, फिर भी वृत्तियां वैसी की वैसी, पशु की तरह, कुत्ते की तरह भटकने वाली रहती है, भटकती रहती वृत्ति। जितने व्यवसाय में से अधिक हम निवृत्त होते हैं, इतनी हमारी वृत्तियां और अन्य खाली जगह पर ज्यादा भटकने और भड़कने लगती है। भगवान यहां पर निवृत्ति की बात कर रहे हैं। हंसावतार की कथा सुना करके भगवान इस प्रसंग में कह रहे कि निवृत्ति परायण का जीवन, जीवन का व्यय किस प्रकार होना चाहिए, उसको कहेंगे उत्तरावस्था। निवृत्ति परायण जीवन, हमारी जीवन यात्रा की पूर्णाहुति आने वाली है और पूर्णाहुति में क्या क्या करना है वो हम पहले से तैयारी कर देते हैं। जैसे आरंभ करते हैं ऐसे पूर्णाहुति के समय क्या करना है, पूर्णाहुति से पहले क्या कर लेना है। पूर्णाहुति तो आएगी, मृत्यु तो एक दिन आने वाली है, लेकिन उससे पहले, पूर्णाहुति होने से पहले हमें एक कार्य पूरा करना है। भागवत जी की, रामायण की कथा सुननी है, 7 दिन तक सुनेंगे फिर जाकर के पूर्णाहुति होगी। कि हमारा सुनने का जो लक्ष्य है उसमें से प्राप्त होने वाली भगवत भक्ति और ज्ञान, उस 7 दिन में हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वैसे ही जीवन यात्रा की पूर्णाहुति के छोर तक हम करीब करीब हैं, जितने जी चुके हैं इतने तो बाकी अब नहीं बचे हैं। बताओ, जितने जी चुके इतने बचे हैं, उससे पहले निकल जाएंगे। तो जीवन यात्रा की पूर्णाहुति, अब इसके छोर तक पहुंचने की हमारी तैयारी, देर नहीं लगी। जितने जीत चुके हैं इतने बरस तो बाकी है ही नहीं, उसमें से आधे भी हो जाए तो बहुत है, क्योंकि 60 तक तो पहुंचे, उसमें से 30 मिल जाए तब भी 90 तक कोई नहीं जा सकता। तो जीवन में अपने यात्रा के पूर्णाहुति से पहले जो कुछ प्रभु प्राप्ति या हमारा लक्ष्य, उस लक्ष्य तक पहुंचने का हमारी पूर्णाहुति काल है, और वहां पहुंचते ही आ जाए मृत्यु, हो जाए पूर्णाहुति जीवन की। जैसे किसी भी उत्सव की पूर्णाहुति का आनंद रहता है, वैसे जीवन की यात्रा की पूर्णाहुति का भी आनंद आएगा, उससे पहले हमारा लक्ष्य ध्येय पूरा हो जाएगा तब। इसका नाम है निवृत्ति। निगतः वृत्ति यस्य सा, ये दुनिया में से अपनी वृत्तियों को हटा लो, खींच लो और अपने स्वस्वरूप में उसका उसको लगा लो, तब जाके निवृत्ति पक्की। व्यवहार और व्यवसाय छोड़ करके दूसरी जगह लग गए, निवृत्ति नहीं होगी और उसे सदगति भी नहीं होगी, मन कहीं कहीं लगा रहे, मन और जीवन बालकवत बन जाए, कहीं पर भी न लगे। और उस तरह जो व्यतीत करने वाले सनकादिक ऋषि, उनके मन में एक प्रश्न उठा। बालकवत जीने वाले, क्योंकि सनकादिक तो हम उनको क्या कहते हैं, हमेशा बालक रूपी रहते हैं सनकादिक चार ऋषि जो है, कभी बड़े नहीं होते। तात्पर्य यह है कि उनकी आयु तो बड़ी लंबी है, लेकिन उनका जीवन का व्यवहार बालक जैसी चेष्टा, कभी छल कपट नहीं, कभी उसमें आसक्ति नहीं, कभी आशा भी नहीं, बस जी रहे और अपने स्वस्वरूप में बालकवत जी रहे, जो मिल गया। और जो मान अपमान, जैसे बालक को कुछ नहीं होता, छोटे बच्चे को मान क्या अपमान क्या, कुछ नहीं, उसको कागज का टुकड़ा है कुछ भी दे दो, गिनती से गिनती चीज जवाहरात दे दो, कोई गहना दे दो, तभी वो तो मुंह में लेकर के खेलता रहेगा, खेलता रहेगा, किसी ने ले लिया तो हाथ छोड़ करके हंसता रहेगा। बस सनकादिक ऋषि भी अपना जीवन बच्चों की तरह जी रहे हैं, उनको न कुछ शोक है, न अपमान है, न दुख है, न सुख। उन सनकादिक ऋषियों के मन में एक प्रश्न उठा, बड़ा गहन प्रश्न है और हमारे सभी को स्पर्श करने वाला प्रश्न है, समस्या जो प्रश्न किया है सनकादिक ने भगवान ब्रह्मा जी को, अपने पितामह को। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है हमारे जीवन तक आ रहा है। चाहे वेदों में कहा होगा, युगों पहले प्रश्न पूछा होगा, लेकिन आज जी रहे हैं वहां पर भी उस जीवंत चेतना का उस स्पर्श, जीवन को भी स्पर्श रहा है, ऐसा प्रश्न। कई प्रश्न ऐसा होते हैं कुछ काम के नहीं, कोई प्रश्न ऐसे होते हैं युग युग तक मानव जीवन को स्पर्शता है, और समस्या को कैसे हल करें उसका कोई कुछ नहीं मिलता है, वो भटकता रहता है, लेकिन समस्या बनी रहती है। समस्या है, प्रश्न है, सनकादिक ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, मन से प्रश्न उठा कि मन और विषयों को कैसे अलग करें, बताओ। प्रश्न आया है मन और विषयों को कैसे अलग करें, है कि नहीं? सबकी समस्या, सबके जीवन में वासनाएं हैं, विषय है, विषय से बचना चाहते हैं फिर भी नहीं बच सकते। बलादि वनियोजिता काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, भगवान अर्जुन को भी कहते हैं। अर्जुन की समस्या यही है जो सनकादिकों ने ब्रह्मा जी की है, वही अर्जुन की समस्या भगवान को कह रहे प्रभु कि मन बड़ा तूफानी है, मन किसी के वश में नहीं आता। तो भगवान भी कहते हैं कि हाँ अर्जुन तेरी बात सच्ची। श्रीमद् भगवद गीता में 26 प्रश्न किए हैं अर्जुन ने, उसमें से भगवान 25 प्रश्नों के का उत्तर अर्जुन जो मानता है जो बोलता है उससे अलग ही ढंग से दे रहे हैं, लेकिन 26वां प्रश्न ऐसा है कि अर्जुन के साथ भगवान को हाँ कहना पड़ा। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवद्रणम, प्रभु मन अत्यंत चंचल है। तब भगवान कहते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, संशय मत कर, मन बड़ा भारी चंचल है। वायोरिव सुदुष्करम, हवा को पकड़ो, उसका झोला भर लो, उसको बांध दो, बांध सकते हो झोल, हवा झोले में भर सकते हो हवा, उसको किसी मकान के अंदर बंद कर सकते हो। वायोरिव सुदुष्करम, जैसे हवा को पकड़ना जितना मुश्किल है इतना ही मन को पकड़ना मुश्किल है। ये समस्या हर एक जीव मात्र की रही है जो जन्म लिया है जिसने इस सृष्टि में सब, और देखो मानव अपने मनुष्य जीवन में भी हमको सबसे बड़ा कोई परेशान करने वाला कोई भी हमारा हो तो हमारा मन, कोई दुश्मन भी इतना हैरान परेशान नहीं करेगा। हाँ वो गालियां दे देगा, कभी मार पीट देगा, सजा कर, लेकिन मन जितनी सजा करता है वैसा सजा करने वाला दुश्मन आज तक इस सृष्टि में पैदा नहीं हुआ। पूरे जीवन भर मनुष्य हैरान है, परेशान है, अशांत है, दुखी है, किससे? अपने मन से। अब उस मन को विषयों से अलग कैसे किया जाए, वो चंचल मन है उसको शांत कैसे किया जाए, बड़ी भारी बात। अब उसके लिए करें भी तो क्या, सनकादिक ऋषि का प्रश्न तो बड़ा सुंदर है और हरेक के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अभी भागवत जी की कथा लिखी गई है 5000 वर्ष तो भगवान के साथ, उससे पहले होगा सनकादिक और ब्रह्मा जी का जो ये प्रश्न और संवाद, तब जा करके भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, दत्तात्रेय भगवान यदुराजा को बता रहे हैं यही बात, नवयोगेश्वर वो भी राजा विदेह को बता रहे हैं, तो लिखिए उससे पहले हुआ होगा ये, तब जाकर तो ये समस्या मानव के लिए हमेशा वैश्विक वैसी बनी हुई पड़ी है कि मन को विषयों से अलग कैसे किया जाए। विषय सबसे पहले उत्पन्न होता है तो मन में ही होता है, वासनाएं सबसे पहले भड़कती है तो अपने मन में भड़कती है, फिर क्रिया में व्यवहार में तो बाद में आएगी। सबसे पहला संकल्प उठेगा, संकल्प बनेगा तो सबसे पहले मन में। जब तक मन में पड़ा हुआ है पाप, तब तक तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया कह दिया है, मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। जब तक वो संकल्प वो वासना मन में पड़ी रही है तब तक आपको पाप के रूप में स्पर्श नहीं करने देगी। लेकिन वो वासना, वो मन का संकल्प वासना का जब क्रिया में आएगा, व्यवहार में आएगा, तब जा करके वो पाप बन जाती है, वही संकल्प पाप बन जाती है। इसलिए मन और विषय उसको अलग करने के लिए जब इतनी बड़ी समस्या और ऐसा प्रश्न सनकादिक जैसे तपस्वी त्यागी ऋषि पूछ रहे हैं, तो बताओ ऋषियों को भी मन की अवस्था क्या हाल होगी, क्या हालत होगी कि उनको भी ये प्रश्न करना पड़ा। समस्या जन जन की है, समस्या हर एक व्यक्ति की है, और वो भी अपने सूक्ष्म मन जो दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ में भी नहीं आ रहा है, पकड़ा भी नहीं जा रहा है, उसको वश में भी नहीं कर सकते हैं, उसमें हम उसके साथ हम विवश हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे वश में नहीं होता, विवश होना पड़ता है हमको मन के साथ, क्योंकि मन का साम्राज्य हमारे शरीर जीवन में इतना बड़ा आधिपत्य है, हमारे जीवन व्यवहार में, कि उस आधिपत्य को हम न तो तोड़ सकते हैं न ठुकरा सकते हैं। उसके साथ बनी हुई जो आसक्ति है, शरीर का जो अध्यास है, वही हमको इसके साथ बंधन में ला करके जकड़ा रखा है। देखेंगे कल इस समस्या को, जब युगों से चली आ रही है तो हमको भी 24 घंटे उसके लिए चिंतन करना ही पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सन्दरां महाराज की है।
जय महाराज, बोल। जय महाराज, बोल।
हम आशीर्वाद से हमारे मर्द भाई चकरी रखते हैं क्या?